नमस्ते। कभी दुकान गए, कुछ खरीदा, पैसे दिए और फिर वो बचे हुए पैसे वापस मिले?
हाँ, ये तो रोज होता है, बिल्कुल आम बात है।
बिल्कुल, पर इस लेन देन में जो छोटी छोटी बातें हैं, रुपीस, पैसे, उनका हिसाब, आज हम उसी पर बात करने वाले हैं।
अच्छा,
हमारे पास ना 10 Money New PDF अध्याय के कुछ हिस्से हैं और आज हम बस इन्हीं के आधार पर भारतीय मुद्रा मतलब रुपीस और पैसे की जो बुनियादी समझ है उसे थोड़ा ताजा करेंगे।
ठीक है, मतलब जो उस चैप्टर में है उसी पर फोकस रहेगा।
हाँ बिल्कुल, जो मुख्य बातें हैं उन्हें अच्छे से समझेंगे।
सही, तो ये चैप्टर असल में पैसों की दुनिया से एक तरह से परिचय कराता है। तो आज की बातचीत में हम यही देखेंगे, जैसा स्रोत में दिया है, कि कौन से सिक्के, कौन से नोट चलन में हैं,
हाँ
रकम कैसे लिखते हैं, अंकों में, शब्दों में, रुपीज और पैसे का आपसी रिश्ता क्या है, बदलते कैसे हैं।
और वो रोज का हिसाब किताब, जोड़ना घटाना।
हाँ बिल्कुल, जोड़ घटाओ गुणा भाग, ये सब कैसे होता है पैसों के साथ।
और कोशिश यही रहेगी कि सब कुछ एकदम साफ साफ और क्या कहते हैं, दिलचस्प तरीके से समझ आ जाए।
चलिए फिर शुरू करते हैं।
तो स्रोत के हिसाब से चलें तो सबसे पहली बात मुद्रा की पहचान। स्रोत याद दिलाता है कि भाई कुछ खरीदना है तो पैसे तो चाहिए।
हाँ, बिना पैसे के तो काम नहीं चलेगा।
और भारत में हम क्या इस्तेमाल करते हैं?
रुपीज जिसका चिन्ह है और पैसे जिसका चिन्ह है पी।
जी, और स्रोत बताता है कि हमारे पास कई तरह के सिक्के और नोट हैं। सिक्के तो सबने देखे ही होंगे।
कौन कौन से?
स्रोत में जिक्र है 1, 2, 5, 10 और 20 के सिक्कों का।
और नोट? नोट भी तो कई हैं।
हाँ, नोट भी हैं, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, ये सब तो हम रोज देखते ही हैं।
अच्छा, स्रोत में 2000 के नोट का भी जिक्र है, पर साथ में ये भी लिखा है कि आरबीआई ने उसे सर्कुलेशन से वापस लेने को कहा है।
हाँ, ये जानकारी भी दी है। और देखिए, हर सिक्के, हर नोट का अपना साइज, डिजाइन, वैल्यू होता है।
सही बात है।
और ये जो रुपी का चिन्ह है ना,
जी,
इसकी भी अपनी कहानी है। स्रोत में एक फैक्ट फ्लैश में बताया गया है
क्या
कि इसे 2010 में श्री डी उदय कुमार ने डिजाइन किया था और इसमें देवनागरी का र और रोमन आर दोनों का मेल है।
अरे वाह, ये तो इंटरेस्टिंग है। मतलब अपनी संस्कृति और मॉडर्न पहचान दोनों जुड़ी हैं।
बिल्कुल।
अच्छा जी, तो ये तो हुई पहचान। अब आते हैं कि रकम लिखते कैसे हैं, खासकर जब रुपीस भी हों और पैसे भी।
हाँ, ये जरूरी है।
स्रोत कहता है कि इसके लिए एक छोटा सा निशान इस्तेमाल होता है, डॉट, यानी डेसिमल पॉइंट।
हाँ,
डॉट के बाईं तरफ रुपीस लिखे जाते हैं और हाँ, दाईं तरफ
पैसे।
ठीक। और यहाँ एक बहुत जरूरी नियम है जिस पर स्रोत काफी जोर देता है।
हाँ, कि पैसे हमेशा दो अंकों में, मतलब 2 डिजिट्स में लिखे जाते हैं।
बिल्कुल, जैसे अगर सिर्फ 5 पैसे हैं तो 0.05 लिखेंगे।
0.5 नहीं लिखेंगे?
नहीं। और अगर पूरे 25 रुपए हैं
तो 25.00 लिखेंगे, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो।
अच्छा, ये मतलब स्टैंडर्ड तरीका है।
हाँ, मानक तरीका है। आप इसे यूं समझिए, जैसे प्लेस वैल्यू होता है ना, तो दशमलव के बाद की 2 जगह पक्की हैं, वो पैसे के लिए ही हैं।
बिल्कुल सही। जैसे स्रोत में कुछ उदाहरण भी हैं। मान लीजिए लिखा है 12.25,
तो इसका मतलब हुआ ₹12 और पैसे 25,
और 0.01
मतलब सिर्फ 1 पैसा,
75.00
यानी पूरे ₹75,
और 20.50
₹20 और 50 पैसे।
और जब शब्दों में लिखते हैं तो रुपीज और पैसे के बीच एंड लगा देते हैं, जैसे 72.35 को बोलेंगे
₹72.35।
हाँ,
और वो 2 अंकों वाला नियम इसलिए जरूरी है क्योंकि मान लीजिए किसी ने 12.5 लिख दिया, अब क्या समझे, 5 पैसे या 50 पैसे?
हाँ, कंफ्यूजन हो सकता है।
बिल्कुल, जबकि 12.05 एकदम साफ है 5 पैसे, और 12.50 भी साफ है 50 पैसे, तो लिखने में स्पष्टता रहती है।
सही बात है। अच्छा, अब जरा रुपीज और पैसे का जो आपसी रिश्ता है उसे समझते हैं। सबसे बेसिक बात क्या है?
जो स्रोत बताता है, 1 रुपए इज इक्वल टू 100 पैसे, 1 रुपए में 100 पैसे।
ठीक। अब अगर हमें रुपीज को पैसे में बदलना हो तो क्या करें?
बहुत सीधा तरीका है। स्रोत कहता है कि रुपीज की रकम को 100 से गुणा कर दो,
या आसान भाषा में कहें तो
रकम के आगे 2 जीरो दबा दो।
अच्छा, जैसे 7 को बदलना है पैसे में तो
7 × 100 यानी 700 पैसे।
ठीक है। और अगर रकम में डेसिमल पॉइंट हो, मान लो 15-25 है,
तो स्रोत बताता है पहले रुपीज वाला हिस्सा देखो, 15, उसे बदलो 15 × 100 हो गया 1500 पैसे,
फिर
उसमें पैसे वाला हिस्सा 25 पैसे जोड़ दो। 1500 पैसे प्लस 25 पैसे इज इक्वल टू 1525 पैसे।
श्रोत में एक इजी ट्रिक भी दी है इसके लिए।
हाँ, कि बस डॉट हटा दो। 15.25 से डॉट हटाया, बन गया 1525 पैसे,
फटाफट,
है ना। अगर हम इसे थोड़ा और सोचें तो ये असल में यूनिट्स का कन्वर्जन ही है। जैसे मीटर से सेंटीमीटर में बदलते हैं, बड़ी यूनिट रुपए से छोटी यूनिट पैसा में जा रहे हैं। वैसे श्रुत में एक और मजेदार फैक्ट फ्लैश है। ये जो शब्द है रुपया, ये संस्कृत के रूपया शब्द से आया है।
अच्छा, उसका क्या मतलब?
रुपया मतलब होता है चांदी या चांदी का गड़ा हुआ सिक्का।
अरे वाह, तो नाम में भी इतिहास छुपा है।
जी हाँ, हमारी मुद्रा का नाम उसकी जड़ों से जुड़ा है।
कमाल है। अच्छा, स्रोत में एक ब्रेन बूस्टर सवाल भी था, 5 रुपी और 50p में से कौन ज्यादा है और क्यों?
ये पता करने के लिए दोनों को एक ही यूनिट में लाना पड़ेगा। पैसे में बदलना आसान है, 5 रुपी मतलब 5 रुपीज।
हाँ,
इसे पैसे में बदलें तो 5 × 100 यानी 500p।
ठीक,
अब तुलना साफ है, 500p और 50p कौन ज्यादा है?
500p ज्यादा है।
जाहिर है, तो मतलब 5 रुपी की रकम 50p से ज्यादा है।
बिल्कुल स्पष्ट। अब इसका उल्टा करते हैं, पैसे को वापस रुपीज में बदलना हो तो स्रोत क्या कहता है?
इसके लिए पैसे की जो संख्या है उसमें दाईं तरफ से, मतलब राइट साइड से, 2 अंक गिनने हैं और फिर डॉट लगा देना है।
अच्छा, जैसे
मान लीजिए 675 पैसे हैं, तो दाईं तरफ से गिनिए, 5 पहला अंक, 7 दूसरा अंक। अब 7 से ठीक पहले डॉट लगा दें और शुरू में रुपए का चिन्ह, तो 675 पैसे बन गया 6.75।
और अगर सिर्फ 80 पैसे हों?
तो दाईं तरफ से 2 अंक गिने, 0 और 8। 8 से पहले डॉट लगाया तो बना 0.80। अब क्योंकि इसमें कोई पूरे रुपए नहीं है तो डॉट से पहले एक 0 लगा देंगे, यानी 80 पैसे इक्वल्स टू 0.80 रुपीज।
ठीक है।
इसे ऐसे भी सोच सकते हैं कि हम 100 पैसे के ग्रुप बना रहे हैं। स्रोत में एक चित्र से समझाया भी है, जैसे 350 पैसे।
हाँ,
तो 350 पैसे मतलब 100 पैसे के 3 ग्रुप बन गए, जो 3 हो गए और 50 पैसे अलग से बच गए, तो कुल मिलाकर हो गए 3.50।
अच्छा, तो ये फिर वही बात हो गई कि डॉट कैसे पूरे रुपीज और बचे हुए पैसे को अलग कर रहा है।
बिल्कुल, प्लेस वैल्यू जैसा ही है।
अच्छा, स्रोत में एक और ब्रेन बूस्टर था। अमन के पास 2000 पैसे हैं, उसे इसके बदले 10 के कितने नोट मिल सकते हैं?
पहले तो 2000 पैसे को रुपीज में बदलना पड़ेगा।
कैसे?
दाईं ओर से 2 अंक गिनकर डॉट लगाएं, 20.00, यानी ये हुए 20।
ठीक, 20 हो गए। अब
सवाल है कि 20 में 10 के कितने नोट होते हैं?
ये तो आसान है, 2 नोट।
बिल्कुल, तो अमन को 2 10 के नोट मिल सकते हैं।
बहुत बढ़िया। तो अब तक हमने पहचान कर ली, लिखना सीख लिया, बदलना सीख लिया। अब आते हैं रोज वाले हिसाब पर, पैसों का जोड़ घटाव गुणा भाग, पहले एडिशन यानी जोड़ना।
पैसों को जोड़ते वक्त स्रोत कहता है सबसे जरूरी नियम, डॉट्स को एक सीध में रखना, बिल्कुल एक के नीचे एक।
हाँ, जैसे हम नॉर्मल नंबर जोड़ते हैं, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, वैसे ही यहाँ डॉट के नीचे डॉट।
सही।
फिर पहले पैसे वाला कॉलम जोड़ते हैं, फिर रुपीज वाला। लेकिन अगर पैसे जोड़ने पर 100 या उससे ज्यादा हो जाएं तब क्या? जैसे मान लें 75p और 50p को जोड़ा तो 125p हो गए।
बस यहीं पर वो 1 = 100p वाला नियम काम आता है। 125p का मतलब क्या हुआ? 100p प्लस 25p।
हाँ,
इसमें से जो 100p हैं वो क्या बन गए?
1 रुपए।
बिल्कुल, तो इस 1 रुपए को हम रुपीज वाले कॉलम में हासिल ले जाते हैं, मतलब कैरी ओवर कर देते हैं।
अच्छा, तो पैसे वाले कॉलम में सिर्फ 25 लिखा जाएगा और 1 आगे चला जाएगा।
हाँ, वो 1 आगे रुपीज में जुड़ जाएगा।
स्रोत में उदाहरण भी दिए हैं इसके, जैसे आयशा ने 1550 की बन और 20.00 का दूध खरीदा, कुल कितना हुआ?
तो इन्हें जोड़ेंगे, 1550 प्लस 20.00 बराबर 35.50।
यहाँ तो पैसे 50 प्लस 00 100 से कम थे, तो सीधा जुड़ गए।
हाँ, कोई हासिल नहीं गया, पर एक और उदाहरण है जहाँ 1275 और 850 को जोड़ा है।
अच्छा, उसमें क्या हुआ?
देखिए, 1 ये हासिल वाला, 1275 प्लस 850 बराबर 2125।
अच्छा, यहाँ 75p और 50p मिलकर 125p हुए।
हाँ, तो 125p का 25 नीचे लिखा और 100p का 1 हासिल चला गया रुपीज में। फिर रुपीज को जोड़ा, 1 प्लस 12 प्लस 8 बराबर 21।
मिल देना है।
एकदम, बस डॉट और हासिल, इन दो बातों का ध्यान रखना है। वैसे पैसों के लेन देन से जुड़ा एक और फैक्ट है स्रोत में।
क्या?
भारत में पहला ATM कब और कहाँ लगा था?
मुझे नहीं पता।
1987 में मुंबई में HSBC बैंक ने लगाया था।
अरे 1987 में? और आज देखो ATM कितना कॉमन है।
है ना, तकनीक कितनी बदल गई।
वाकई। खैर अब आते हैं सब्ट्रैक्शन पर, यानी घटाओ।
यहाँ भी वही पहला नियम।
हाँ जी, डॉट्स को एक सीध में रखना, पहले पैसे घटाएं फिर रुपीस।
और यहाँ अक्सर उधार लेने की जरूरत पड़ती होगी।
बोरोइंग।
हाँ बिल्कुल, अगर ऊपर वाले पैसे कम हैं और नीचे वाले ज्यादा, तो बगल वाले यानी रुपीस के कॉलम से उधार लेना पड़ता है।
वन उधार लेते हैं।
और जब रुपीस से वन उधार लेते हैं तो वो पैसे वाले कॉलम में जाकर कितना बन जाता है?
वही नियम, 1 rupees = 100 paise। तो जब 1 उधार लिया तो पैसे वाले कॉलम में 100 जुड़ जाते हैं।
अच्छा, मान लीजिए 50.75 में से 25.60 बटाना है, यहाँ तो 75 पैसे में से 60 पैसे घट जाएंगे। पर अगर वो उदाहरण ले जो स्रोत में है, 100.00 में से 48.50 घटाना है।
हाँ, इसमें 100.00 में पैसे तो 00 हैं, उसमें से 50 कैसे घटाएं?
सही, तो रुपीज से उधार लेंगे, 100 में से 1 उधार लिया जो 100 पैसे बन गया, तो रुपीज में कितने बचे?
99।
हाँ 99 रह गए, और पैसे वाले कॉलम में कितने आ गए?
100p।
अब 100p में से 50p घटाएं तो
50 भी बचे।
और 99 में से 48 घटाएं तो
51 बचे।
तो जवाब क्या आया?
51.50।
एकदम सही, घटाओ का इस्तेमाल हम अक्सर करते हैं ना, जब दुकानदार को पैसे देते हैं और देखते हैं कितने वापस मिलेंगे, उसे चेंज कहते हैं।
हाँ चेंज।
स्रोत में अर्जुन का उदाहरण है, 50 का नोट दिया, 20.00 का जूस लिया, तो 50.00 माइनस 20.00 इज इक्वल टू 30.00 वापस मिले। ये तो सीधा था, उधार वाला उदाहरण दिखाता है कि पैसे कम पड़ने पर कैसे करते हैं।
बिल्कुल। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की, यानी गुणा। ये कब काम आता है?
आमतौर पे तब जब हम एक ही दाम की कई सारी चीजें खरीदते हैं।
अच्छा।
जैसे स्रोत में उदाहरण है, 1 लड्डू 8 रुपए का है और 4 लड्डू खरीदने हैं।
हाँ
अब आप 8 रुपए को 4 बार जोड़ भी सकती हैं।
हाँ पर वो लंबा हो जाएगा।
बिल्कुल, तो गुणा करना तेज है। स्रोत बताता है कि पहले नॉर्मल नंबर की तरह गुणा कर लो, फिर जो जवाब आए उसमें दाईं तरफ से 2 स्थान गिनकर डॉट लगा दो।
तो 8.00 × 4 के लिए पहले हम समझो 800 को 4 से गुणा करें।
हाँ, 800 × 4 कितना हुआ?
3200।
अब इसमें दाईं तरफ से 2 स्थान गिनो, 0 और 0, और डॉट लगा दो।
32.00। तो 32 रुपए हो गए 4 लड्डुओं के।
सही, एक और उदाहरण है, 5 पेंसिलों का, हर पेंसिल 4.50 की।
तो 4.50 × 5 करना है। पहले 450 को 5 से गुणा करें।
हाँ, 450 × 5 कितना होता है?
2250।
ठीक, अब दाईं तरफ से 2 स्थान 5 और 0 गिनकर डॉट लगाएं।
22.50।
हाँ,
तो 22.50 हो गए।
बिल्कुल, इसमें आप देखिए 50 पैसे को 5 से गुणा किया तो 250 पैसे बने, वो अपने आप गुणा में 2 और 50 पैसे में बदल गए।
हाँ ये तो है, ये बार बार जोड़ने का ही छोटा रूप है।
बिल्कुल,
रिपीटेड एडिशन। और आखिर में है डिविजन, यानी भाग।
ये कब इस्तेमाल होता है?
स्रोत कहता है पैसे बराबर बांटने के लिए, या फिर जब हमें कई चीजों का कुल दाम पता हो और एक का निकालना हो।
ठीक है,
और भाग करते कैसे हैं पैसों का?
वैसे ही जैसे नॉर्मल भाग करते हैं।
बस एक बात ध्यान रखनी है, अगर आप ऐसी रकम को भाग दे रहे हैं जिसमें डॉट है, तो जो जवाब आएगा उसमें डॉट ठीक उसी जगह पर लगाना है जहां भाग दी जाने वाली रकम में है।
अच्छा,
जैसे
मान लो 48 को 4 दोस्तों में बांटना है,
तो 48/4
12, हर एक को 12 मिलेंगे।
सही। और अगर 96.30 को 3 लोगों में बांटना हो,
हाँ,
स्रोत में ये हल करके दिखाया, जवाब आता है 32.10।
तो भाग करते हुए जैसे ही हम डॉट के बाद वाला अंक 3 नीचे उतारते हैं, तभी जवाब में भी डॉट लगा देते हैं।
हाँ बिल्कुल उसी वक्त। एक और उदाहरण है, 24.00 को 6 दोस्तों में बांटना है,
24.00/6 = 4,
हर दोस्त को 4।
बिल्कुल, डिवीजन का मतलब ही है बराबर हिस्से करना, फेयर शेयरिंग। स्रोत में एक फैट फ्लैश ये भी कहता है कि अगर जरूरत पड़े तो भाग को आसान बनाने के लिए रुपीस को पैसे में बदल सकते हैं।
अच्छा।
जैसे 24.00 को 2400P लिखकर भाग दें।
हाँ, खासकर अगर भाग पूरा पूरा ना जा रहा हो या दशमलव में बिल्कुल सटीक जवाब चाहिए हो।
ये भी एक तरीका है। तो ये सब सिर्फ नियम नहीं है, स्रोत में जो एक्सरसाइजेज हैं 10.1 से 10.7 तक, और वो गतिविधियां जैसे मैथ्स लैब एक्टिविटी, कैंटीन कॉर्नर, पिकनिक प्लानिंग,
हाँ वो सब दिखाती हैं कि ये गणित असल में कहाँ काम आता है।
जैसे एक्सरसाइज 10.1 का एक सवाल था, एक 50 के नोट में कितने 10 के नोट होते हैं?
5।
हाँ, या एक्सरसाइज 10.3 में वो सवाल था, दो दुकानों वाला, दुकान ए बिस्किट बेच रही है 8.50 में, दुकान बी वही बिस्किट 825 पैसे में, कौन सी सस्ती है? तो यहाँ तुलना करनी है, दोनों को एक जैसा बनाना पड़ेगा।
825 पैसे को रुपीज में बदलें तो?
दाईं से दो अंक गिनकर डॉट 8.25।
हाँ,
अब आसान है, 8.50 और 8.25 कौन कम है?
8.25 कम है, मतलब दुकान भी सस्ती है।
बिल्कुल, यही छोटी छोटी कैलकुलेशंस तो हम करते हैं रोज, कहाँ से लें, कितना बचेगा, ये जोड़ घटाओ गुणा भाग, ये सब रोजमर्रा की जरूरतें हैं।
सही बात है। तो कुल मिलाकर आज हमने इस अध्याय के आधार पर क्या क्या देखा? हमने रुपीज और पैसे को पहचाना,
हाँ, भारतीय मुद्रा,
रकम को अंकों और शब्दों में लिखना सीखा, खासकर वो डॉट वाला नियम और पैसे के दो अंक, उनके बीच का रिश्ता 1=100P और उन्हें बदलना, रुपीज से पैसे, पैसे से रुपए,
हाँ, कन्वर्जन,
और फिर वो चारों बेसिक हिसाब किताब, जोड़ घटाओ गुणा भाग पैसों के साथ कैसे करते हैं, डॉट का ध्यान रखना, हासिल लेना, उधार लेना, ये सब।
बिल्कुल, और ये सारे स्किल्स असल में पैसों को संभालने की, मैनेज करने की पहली सीढ़ियां हैं। अगर हम थोड़ा और सोचें, स्रोत में जो गतिविधियां हैं, कैंटीन कॉर्नर, पिकनिक प्लानिंग, वो सिर्फ गणित का अभ्यास नहीं है,
तो क्या है?
वो हमें चुनना सिखाती हैं, बजट बनाना और फिर उस बजट में रहना, ये सब भी तो सिखाती हैं।
हाँ ये तो है, ये सिर्फ हिसाब नहीं बल्कि समझदारी से खर्च करने की तरफ पहला कदम है।
और यहीं से एक सवाल दिमाग में आता है, सीधे तौर पर स्रोत में नहीं है पर जुड़ावा सा लगता है।
क्या?
जब हम उन गतिविधियों के बारे में सोचते हैं, कैंटीन का मेन्यू देखना, पिकनिक का प्लान बनाना, तो क्या ये सोचने वाली बात नहीं कि रोज हम जो पैसे खर्च करने के छोटे छोटे फैसले लेते हैं, जो उस वक्त शायद बहुत मामूली लगते हैं,
हाँ
वो लंबे समय में जुड़कर हमारी कुल बचत पर या कुल खर्च पर कितना बड़ा असर डाल सकते हैं?
ओ, ये तो वाकई सोचने वाली बात है। छोटे छोटे खर्चे पता ही नहीं चलता कब बड़े बन जाते हैं। तो इसी विचार के साथ आज की इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। उम्मीद है स्रोत के आधार पर भारतीय मुद्रा और उसके हिसाब किताब की जो बातें हमने की वो सबके लिए उपयोगी रही होंगी।
जी।